अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत मुअल्लिम, इसका टॉपिक नंबर 44, 44, तुलबा की गैर हाजिरी का नोटिस लेना, इसको देखेंगे। आइए देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर हाजिर होने वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या करते थे। और ये टॉपिक टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी सुनना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स इस पे बहुत बुरा मनाते हैं कि हमारा इतना नोटिस क्यों लिया जाता है, क्यों हमें कहा जाता है जी कि आओ बैठो, ये करो, क्या हुआ, इतनी सख्ती करते हैं, फिर तो हम आते हैं तो हमें शर्म आती है। तो चलिए आज अल्लाह के नबी से देखते हैं। मैं तो ऐसे समझती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को उसके ना आने पर एहसास दिलाना, ये उससे मोहब्बत की दलील है। हर एक को तो इंसान मिस भी नहीं करता, कुछ लोग हो ना हो एक बराबर, लेकिन कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो नहीं होते तो पूरा वक्त टीचर के जहन में गड़बड़ रहती है, खैरियत हो, सब ठीक हो, बीमार तो नहीं है, रास्ते में तो नहीं है। तो ये चीज़ उनको मानूस करने के लिए, उनकी हैसियत का एहसास दिलाने के लिए और उनको मोटिवेशन देने के लिए कि आपके ना आने से आपका भी हर्ज होता है और हमारा भी होता है, ये सब चीज़ें हमें नबी सल्लम की ज़िंदगी से मिलती हैं। इंशाल्लाह हम चार मुख्तलिफ मिसालें देखेंगे इस बारे में। पहली मिसाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चुपके से चले जाने पर सवाल किया जो आपने, उसके बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्ला ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत नकल की। बयान करते हैं, लकीयनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना जुनुबुन फअखज़ बियदी फमशीतु माहु हत्ता क़ादा फनसललतु फअतैतु रहला फ़ग्तसलतु ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिले, मैं उस वक्त जुम्बी था। जुम्बी से मुराद जुनाबत की हालत कि जिसमें इंसान नमाज कुरान से दूर रहता है, क्योंकि लफ्ज़ जंप का मानी ही एक साइड पे रहना होता है। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं आपके साथ चलने लगा, यहाँ तक कि आप एक जगह बैठ गए तो मैं चुपके से निकलकर घर आ गया और गुसल किया, फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आप उस वक़्त तक बैठे हुए थे। आपने पूछा अबू हुरैरा तुम कहाँ थे, मैंने सूरत हाल बतलाई तो आपने फरमाया सुबहान अल्लाह, ए अबू हुरैरा मोमिन नजस नहीं होता। यहाँ आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से उठकर जाने वाले अपने तालिबे इल्म से पूछा, बल्कि ये भी बताया कि देखो तुम जुनाबत की वजह से चले गए थे, हालांकि मैं नबी हूँ, मेरे पास तुम इस महफिल में बैठ सकते थे इस कंडीशन में भी। इस पर हाफिज़ इब्ने हजर कहते हैं कि इसमें इस बात का इस्तेहबाब है। इस्तेहबाब कहते हैं पसंदीदा बात, यानी रिकमेंडेड बात क्या है कि पेशवा को, पेशवा यानी यहाँ उस्ताद है, को अपने पैरोकार यानी स्टूडेंट को ठीक बात से आगाह करना चाहिए, अगरचे वो इस बारे में सवाल ना भी करे। तो अब आप देखिए कि इस हदीस से हमें चंद बातें पता चलती हैं। पहली बात है कि अल्लाह के नबी ने अपने शागिर्द के हाथ को थामा, ये बहुत ही मोहब्बत का अंदाज़ होता है। याद रखिए कि शागिर्द उस्ताद का हाथ पकड़े या उसके कंधे पे हाथ रखे तो ये गुस्ताखी होगी, ये बेअदबी समझी जाएगी, लेकिन उस्ताद अगर मोहब्बत में कभी शागिर्द के कंधे पे हाथ रखे, उसका हाथ पकड़े, तो शागिर्द के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता है। इसमें इमाम और आलिम का अपने शागिर्द के हाथ को पकड़ना और इस पर टेक लगाते हुए चलना साबित हुआ, यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सहारा लेकर चल रहे थे। फिर उसके बाद देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को आवाज़ दी, या अबा हुरैरा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो तालिब इल्म होते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज होते हैं, अगर वो बग़ैर बताए कहीं चले जाएँ या गैर हाजिर हों तो उस्ताद को इसका हक पहुँचता है कि वो उनसे पूछे। और इसमें स्टूडेंट्स को बुरा मानने की बजाय खुश होना चाहिए कि हमारे ना होने को उस्ताद ने महसूस किया। इसी तरह एक दूसरा वाक़या साबित बिन कैस रदी अल्लाह अन्हो की गैर हाजिरी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल करना है। इमाम मुस्लिम ने हजरत अनस से ये रिवायत नकल की, कहते हैं कि लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी इला आखिर लाया, यानी ये आयत का शुरू है और आखिर तक जब यह आयत नाजिल हुई, जलस साबित इब्न कैस रदी अल्लाह अन्हु फी बैतिही व काला अना मिन अहलि नार वह तबस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्न माजिन رضی اللہ عنہ فقال یا ابا عمر ما شان ثابت اشتکا قال سعد رضی اللہ عنہ انہ لجاری وما علمت له بی شکوا قال فأتاه سعد رضی اللہ عنہ فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت رضي الله عنه أنزلت هذه الآية لقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. كتنی خوبصورت روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں تو جہنمی ہوں. یہاں سے آپ دیکھیں کہ کتنا تزکیہ ہوا ہوا تھا. اپنے آپ کو فوراً چیک کرتے تھے کہ کہیں اس آیت کی زد میں ہم تو نہیں آتے. آیت یہ نازل ہو گئی کہ اللہ کے نبی سے اونچا نہ بولو. چونکہ ان کی آواز فطری طور پہ اونچی تھی تو اپنے اوپر خود ہی گمان کرنے لگے کہ اوہو میں تو جہنمی ہوں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانے سے رک گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہوئے فرمایا اے ابو عمر ثابت کیسے ہیں, کیا وہ بیمار ہو گئے؟ سعد نے عرض کیا بے شک وہ میرے پڑوسی ہیں, مجھے تو ان کی بیماری کا علم نہیں. راوی نے بیان کیا کہ سعد رضی اللہ عنہ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار کا ذکر کیا تو ثابت کہنے لگے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور بے شک تمہیں معلوم ہے کہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں تم سب کی آواز سے زیادہ بلند ہے, تم سب کی آوازوں سے بلند ہے, اسی لیے میں تو جہنمی ہوں. سعد رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا بلکہ وہ تو جنتیوں میں سے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیے کہ ان کے تقویٰ کا معیار دیکھیے کہ اپنا محاسبہ کیا تو اس پہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کا پتہ چل گیا, ورنہ اگر یہ اتنا تقویٰ نہ ہوتا ان میں اور اس طرح سے اپنا محاسبہ نہ کرتے تو شاید ان کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پہنچتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس میں خوف کی وجہ سے جتنا وہ اپنے آپ کو برا یا گناہ گار سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, لیکن اس کا ایمان اور اس کا تقویٰ, اس کا اپنا محاسبہ کرنا اس کو اس سے بڑا فائدہ دلا دیتا ہے. جیسے کہ یہاں اب ثابت بن قیس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صحابہ کرام میں سے تھے اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل مل گئی. ہم تو ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں نا جی مرحوم و مغفور اور فلاں تو جنتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ وہ جنتی ہوں, لیکن بہرحال انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اپنے محاسبے کی چیز کم نہ کرے, اللہ سے امید اچھی رکھے اپنے لیے بھی اور دوسرے فوت شدگان کے لیے بھی, لیکن یقینی بات تو اللہ ہی کو پتہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فقال رجل یا رسول اللہ انا عالم لك علمه, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھا تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اس کے بارے میں خبر لا کر عرض کرتا ہوں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی کے نہ ہونے کو محسوس کیا, ان کی غیر حاضری کا نوٹس لیا اور ان کے پڑوسی سعد بن معاذ سے پوچھا. امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ عالم اور قوم کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنے رفقا کی غیر حاضری کا نوٹس لے اور غیر موجود اشخاص کے متعلق دوسروں سے پوچھے. تو آپ دیکھیے کہ یہ تو محبت کی باتیں ہیں, جتنی جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی لوگ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کی فکر کرتے ہیں. تو کبھی بھی برا نہیں منانا چاہیے کہ جی ہمیں اتنا کیوں پوچھا جاتا ہے, بلکہ خوش ہوں کہ ہم اہم ہیں اور ہمارے بارے میں کسی کو فکر ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کے غیر حاضر ہونے پر پوچھا اور صرف آپ کے حال پوچھنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ پیغام بھی بھیجا اور مجلس سے غیر حاضری کی وجہ بھی پوچھی. اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ یہ بیمار ہے. یہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ کو ملتی ہے اور وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے. کیونکہ دیکھیے بیماری تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے نا, या ऐसे जैसे किसी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं आती, एक तो है सो गई होंगी ना, हाँ इनको तो शौक ही नहीं है, बैठ गई घर में, और दूसरा ये हाय बेचारी बीमार तो नहीं हो गई। तो आप देखें कि किसी को बीमार समझना असल में उसको रुख्सत देना होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लम रुख्सत देते हैं, और यहाँ से ये भी पता चला कि अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते थे, वरना आप कैसे कह सकते कि वो बीमार तो नहीं हो गए। अल्लाह के नबी का बशर होना भी साबित होता है। इमाम बुखारी की रवायत में यहाँ ये आता है, फ़क़ाल मूसब्न अनस रदी अल्लाह अन्हु फ़रज अल मर्रत अल आखरत बी बिशारतिन अजीमतिन फ़क़ाल इसहब इलैही फ़क़ुल लहू इन्नक लस्त मिन अहलि नारि वलाकिन मिन अहलि अल जन्ना। मूसा बिन अनस ने बयान किया कि दूसरी बार वो अजीम बशारत के साथ पलटे, आपने फरमाया इनकी तरफ जाइए और इनसे कहिए यकीनन तुम जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हो। तो बहरहाल सारी बात का खुलासा क्या है कि शागिर्दों का ना आना, उसके ऊपर बात करना शागिर्दों के लिए खुशी की बात है, और इंसान इससे अपनी अहमियत को महसूस करता है। एक तीसरा वाक्या है बेटे के गम में गैर हाजिर रहने वाले के मुतल्लिक इस्तफसार। इमाम निसाई ने मुआविया बिन क़र्र से रिवायत नकल की, उन्होंने अपने बाप से बयान करते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा यजलिसु इलैहि नफरु मिन असहाबिही वफीहिम रजुलुन लहु इब्नु सगीरुन यातीहि मिन खल्फि ज़हरिही फयुक़इदुहु बैना यदैही फहलका फम्तना अर्रजुलु अन यहदुरल खल्क़ता लिज़िक्र इब्निही फहज़िना अलैह फ़फ़क़दहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला मा लिला अरा फ़लानन क़ालू या रसूलल्लाही बुनैयहु अल्लज़ी रअयतहु हलका फ़लक़ियहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सअलहु अन बुनैयिही फ़अख़बरहु अन्नहु हलका फ़अज़्ज़हु अलैहि सुम्मा क़ाला या फ़लानु अय्युमा काना अहब्ब इलैका अन तमत्ता बिही उम्रुका أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي قال فذاك لك سبحان الله। कितने प्यारे अंदाज से अल्लाह के नबी लोगों के गमों को बुलाया करते थे। तर्जुमा देखते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते तो आपके साथ सहाबा की एक जमात भी बैठती थी। इन्हीं में से एक छोटे बच्चे वाला शख्स था जो कि इसके पीछे से आता तो वो इसको अपने आगे बिठा देता। वो बच्चा फौत हो गया तो इस शख्स ने बच्चे की याद के गम में हल्के में हाजिर होना छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गैर हाजिरी का नोटिस लिया और दरियाफ़्त फरमाया, क्या बात है, मैं फ़लां शख्स को मजलिस में नहीं देख रहा। लोगों ने बतलाया, या रसूल अल्लाह, इसका वो छोटा सा बच्चा यानी प्यारा सा जो था जिसे आप मजलिस में देखते थे वो फौत हो गया। अब आप देखिए कि हमने उस बच्चे को देखा नहीं, लेकिन इसको पढ़ते हुए एकदम दिल दुख रहा है ना कि मासूम सा बच्चा था, अल्लाह के नबी की महफिल में भी आता था और फौत हो गया। इंसान थे वो सब, खुशी गम उनके साथ भी लगे थे। हम अपनी खुशियाँ और अपने गमों को क्यों इतना बड़ा समझ लें कि फिर हम अल्लाह के रास्ते के काम भी ठीक ना कर सकें। याद रखिए कि इंसान जितना अपनी ज़ात में जिएगा उतना वो अल्लाह के कामों से हट जाएगा। बेहतरीन तरीका क्या है, उफ़व्विज़ुम्री इलल्लाह, अपने सारे मामले, खुशियाँ, गम, एक्साइटमेंट सब अल्लाह के हाथ में डाल दीजिए और फोकस होकर अपना काम करें। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से मुलाकात फरमाई और इससे इसके छोटे बेटे के मुतालिक दरियाफ्त फरमाया। इसने बतलाया कि वो फौत हो चुका है, तो आपने इसको तसल्ली दी। फिर आपने इससे फरमाया, ए फलां, तुझे दोनों में कौन सी बात ज़्यादा पसंद है? अपनी सारी उम्र इससे तू फ़ायदा उठाता, यानी बच्चा बड़ा होता फिर तेरी खिदमत करता, ये अच्छा लगता, या कल जन्नत के दरवाज़ों में से किसी दरवाजे पर तुम आओ तो वहाँ वो तुमसे पहले पहुँचा हुआ हो और जन्नत के दरवाजे को तुम्हारे लिए खोले। इसने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला के नबी, मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि वो जन्नत के दरवाजे पर मुझसे पहले पहुँचे और इसको मेरे लिए खोले। आपने फरमाया, पस ये जज़ा तेरे लिए है। यहाँ से क्या पता चला कि जो बच्चे बचपन में फौत हो जाते हैं तो वो माँ बाप से पहले जन्नत में पहुँचेंगे, और जब माँ बाप का इंतकाल होगा तो जन्नत के दरवाज़ों पे वो उनका वेलकम करेंगे। क्या पता बड़े होकर ये बच्चे इंसान की आंखों के आंसू बने, नाफरमान बने, शराबी हों, या गुनाहगार होके जहन्नुम में पहुंच जाए। कोई नहीं जानता कि ये बच्चे जो आज दुनिया में अल्लाह ताला माँ बाप के हाथों से ले लेता है, कल ये बच्चे माँ बाप के लिए कितनी खैर का सबब हो। तो यहाँ से भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने अपने साथी के ना आने को महसूस किया और जब सबक मालूम हुआ तो उनकी तशफ़ी की, तसल्ली दी। मुसलमान कभी लिया दिया नहीं रहता। आप देखिए कि हम इंसान हैं, जब तक हम इंसानों से मोहब्बत नहीं करते, आप चाहे उस्ताद हैं या शागिर्द हैं, माँ हैं या बच्चा हैं, कुछ भी हो, बस आपको दूसरों को मोहब्बत देनी पड़ेगी। केयर दीजिए उनको, एकदम एहसास दिलाइए कि नहीं तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, मैं तुझे मिस करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। बस दफ़ा लोग इतना इन चीज़ों में झिझक महसूस करते हैं कि दिल में भी बात होती है लेकिन ज़ुबान पे नहीं लाते। फिर इसी तरह आप देखिए कि इससे एक और साइड इशू मिला कि बच्चा माँ बाप के साथ नबी सल्लम की महफिल में आता था तो आप मना नहीं करते थे। आज ज़रा बच्चे आ जाएं तो बाज़ दफ़ा लोग इतना इसको अचंभा बना लेते हैं कि फिर बच्चों वाले आना ही छोड़ देते हैं। देखिए हर चीज़ के एक दर्जे होते हैं। अगर लोकल दर्स हों, कोई बातचीत हो, हल्के हैं, थोड़ी बहुत दीन की बातें हो रही हैं, तो बच्चों वालों को कभी मना नहीं करना चाहिए। इसलिए कि बच्चों वाले घर रह जाएंगे तो फिर तो बहुत बड़ा तबका एक महरूम रह जाएगा इल्म से। हाँ, अच्छी जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ बच्चे भी खेलते रहें या कम अज़ कम बच्चों वाले वहाँ बैठ के सुन सकें, लेकिन अल्लाह के नबी ने मना ना किया। फिर एक रिवायत में ये आता है कि आपने बच्चे के वालिद से पूछा, अतुहिब्बुहू, क्या तुम इससे प्यार करते हो? इससे क्या पता चलता है कि माँ बाप को बच्चों से प्यार करना चाहिए। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाही अहब्बक अल्लाह कमा अहब्बुहू, क्या आपसे अल्लाह ताला उसी तरह मोहब्बत करे जैसे कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर इस तरह आप देखिए कि दुखी इंसान को तसल्ली देने का अंदाज़ भी हमें दिखता है, और आप किस तरीके से तालीम देते वक्त अंदाज़ इख्तियार करते थे। तो ख़ुलासा क्या है कि दीन का काम करने वाले भी इंसान होते हैं, उनके अंदर जज्बात होने चाहिए। दूसरों के चेहरों पे गम खुशी देख कर उनको तसल्ली दें, पूछें, इससे एक कम्युनिकेशन भी बढ़ती है और कुछ ना कुछ इजाला तो हो ही जाता है ना। ठीक है, डिसिप्लिन अपनी जगह, लेकिन इंसान और पत्थर में बहरहाल फ़र्क होना चाहिए। आखिरी वाक्य देखते हैं इस बाब का, गैर हाजिर होने वाले अंसार के मुतालिक इस्तफसार। इमाम हाकिब ने अब्दुल्ला बिन बुरैदा से, और उन्होंने अपने बाप से रिवायत नकल की, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअहदुल अंसार वयाउदुहुम वयसअलु अनहुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार का ख्याल रखते, इनमें से बीमार होने वालों की इयादत फरमाते और इनमें से गायब होने वालों के मुतालिक सवाल करते। तो इससे क्या पता चलता है कि आप लोगों को अहमियत देते थे। जहरी बात है कि अंसार आपके होस्ट भी थे, उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में इस्लाम को सहारा दिया, अल्लाह के नबी को वेलकम कहा, तो यकीनन अल्लाह के नबी के दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी। तो इससे क्या पता चलता है कि मोहब्बत के लिए ये सब कुछ होना चाहिए। और आप देखिए कि ये भी एक अजीब बात है कि कोई महीनों ना आए, सालों ना आए, उस्तादों को पता ही ना हो, जितनी मोहब्बत होगी उतना अच्छा होगा। मुझे ये बातें बताते हुए अपने वालिद से सुनी हुई एक बात याद आ गई। कहते थे कि स्कूल में जब छुट्टी हो जाती थी तो सबसे आखिर में कौन जाता था? एक तो वो स्टूडेंट जिसने सबक नहीं याद किया होता था, और साथ उस्ताद, यानी उस शागिर्द को छुट्टी नहीं मिलती थी जो काम ना करे या सबक याद ना करे। तो हम उनसे पूछे थे, अच्छा शाम तक वो स्टूडेंट बैठता था? कहा जी। तो साथ उसके कौन बैठता था? कहा उस्ताद बैठते थे। तो मुझे याद है कि हम कहते थे कि ये तो उस्ताद की सज़ा हो गई, लेकिन उन लोगों को पैसों की फिक्र थोड़ी थी कि हमारे आवर्स पूरे हो गए, हमने तो इतने घंटे की बात की थी और हम इससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते, बैठ जाते थे। और हर दिन कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा हो गया जिसने सबक नहीं याद किया होगा, तो उस्ताद बेचारे बैठे होंगे। आज प्रोटोकॉल का मामला करके हम इन चीज़ों को पीछे कर दें तो वो मोहब्बत और वो खलूस, इसीलिए तो इस रिश्ते की वो हुरमत नहीं रही। जितना उस्ताद अपने दिल में तालिब इल्मों की मोहब्बत महसूस करेगा, उतना ही उनकी गैर हाजिरी पे उसका दिल दुखेगा, जलेगा। तो हम इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद अपने लिए अमल की बातें नोट कर सकते हैं।